Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama.
Jai Om Vishnu Bada Pramanastu Prajaka Acharya Tvain Grace Yesi Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namachar Srila Haridas Thakur Ki Jai Granthra Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Hari Pramanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण से नवम स्कंध अध्याय 10 और श्लोक संख्या 52 और 53। 52 में तात्पर्य नहीं है तो मैं पढ़ लेता हूं। बनानी नद्दो गिरयो वर्षाणी दीप सिंधव सर्वी काम दुधा आसन प्रजानाम भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, भगवान रामचंद्र के राज में सारे वन, नदियां, पर्वत, राज्य, सातों द्वीप तथा सातों समुद्र, सारे जीवों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए अनुकूल थे। न आधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लमः मृत्युः च अनिच्छताम् न आसीत रामे राजनी अधक्षजे। नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लमा मृत्यु च निक्षिताम् नासे रामे राजन अधोक्षजे नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुःख शोक भय क्लमा मृतुश्चान्निक्षिताम् नासेत् रामे राजन् अधोक्षजे नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुःख शोक भय क्लमा मृतुश्चान्निक्षिताम् नासेत् रामे राजन् अधोक्षजे माता जी लोग नहीं आधी आध्यात्मिक अधिभौतिक तथा अधिदैविक कष्ट व्याधि रोग जरा बुढ़ापा ग्लानि बिछो दुख कष्ट शोक पश्चाप भय डर क्लमा थकावट मृत्यु मरण च भी अनिच्छताम न चाहने वालों का न आशित नहीं था रामे भगवान श्री राम के राज्य में राजनी राजा होने के कारण अधोक्षजे भगवान जो इस जगत से परे हैं। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट रोग बुढ़ापा बिछो पश्चाताप दुख डर तथा थकावट का नामों निशान न था, यहां तक कि न चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं थी। तात्पर्य, इतनी सारी सुविधाएं इसलिए विद्यमान थी क्योंकि भगवान रामचंद्र संपूर्ण जगत के राजा थे। ऐसी ही परिस्थिति इस कलयुग में भी तुरंत लागू की जा सकती है, भले यह युग समस्त युगों में निकृष्ट क्यों न हो। कहा गया है, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण जी इस कलयुग में केवल अपने पवित्र नाम हरे कृष्ण हरे राम के रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम अपराध रहित होकर कीर्तन करें तो इस युग में राम तथा कृष्ण अब भी उपस्थित हैं। राम राज्य अत्यधिक लोकप्रिय एवं लाभदायक था और इस युग में भी इस हरे कृष्ण आंदोलन के प्रसार से वैसे ही परिस्थिति लाई जा सकती है। ओम अज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूसुपुरुषम् भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् शोलम् कृषिष्टम् भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेमश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये भावराधिका माधुरी। अस्वादय सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो त्रेता युग की कथा कलयुग में सुखदेव गोस्वामी परिचित महाराज से कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसी कथा है कि युग परिवर्तन होता गया लेकिन वो कथा चलती रही। भगवान श्री राम की जो कथा है या कृष्ण कथा है वह चलती है। मुख्य करके राम कथा, कृष्ण कथा बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन राम कथा को उंगली पर लोग जानते हैं। दशरथ जी के बेटे थे, दशरथ जी की तीन रानियां थी, चार पुत्र उत्पन्न हुए, विश्वामित्र जी आए, इन लोगों को लेकर गए, शिक्षा दीक्षा दिए, जनकपुर लेकर गए। जनकपुर में जनक महाराज ने एक प्रण रखा था, स्वयंवर रखा था कि भगवान शिव के धनुष को जो तोड़ देगा उससे सीता का विवाह होगा। राम भगवान उस धनुष को तोड़ दिए, फिर चारों भाइयों का क्रमशः विवाह हुआ। जब अयोध्या आए तो महाराज दशरथ भगवान राम को राज तिलक कर करके अपने वानप्रस्थ लेना चाहते थे, लेकिन उनकी सबसे छोटी रानी कैकेयी हड़ताल पर चली गई, और जिसका परिणाम यह हुआ उसे दो वचन दशरथ जी ने दिया था और वचन का पालन करना था। सबसे छोटी भी रानी थी, बड़ी प्यारी थी, तो जो वचन था उस वचन से, एक वचन से राम को 14 साल के लिए वनवास और दूसरे वचन से भरत को राज्याभिषेक होना था। राम तो वन चले गए, उनके साथ साथ लक्ष्मण और सीता भी गई, और इधर राम के विरह में दशरथ जी प्राण त्याग दिए। भगवान श्री राम जब जंगल में गए तो कुछ दिन तक चित्रकूट रहे, उसके बाद में वहां से दंडक वन में गए, पंचवटी में निवास किए, वहां पर विभिन्न प्रकार से लीला करते हुए निवास कर रहे थे कि रावण की बहन शूर्पणखा आई और उसके नाक को लक्ष्मण जी काट दिए। बाद में रावण का अत्याचार प्रारंभ हुआ और सीता का हरण किया, जटायु युद्ध हुआ, और अंत में भगवान राम बांदरों के सहायता से रावण का वध कर करके अयोध्या आ गए। बस हो गया रामायण, सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी, समय परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी समय परिस्थिति के अनुसार ही काम किए हैं। कहते हैं तस्य अनुचरितम राजन ऋषि तत्वदर्शित दर्श भी, हे राजन उन भगवान श्री राम का चरित्र आप साधु महात्माओं के मुंह से बहुत सुने होंगे। साधुओं का काम है भगवान राम का, भगवान कृष्ण के कथा को बताना, अन्य कोई कथा नहीं बताना, केवल राम कथा बताना। ये कलयुग के समय का बात है। तस्य अनुचरितम राजन ऋषि भी तत्वदर्श भी, तो शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी जिससे कहीं मिलें, चाहे लाइफ नंबर बनाने जाते हों, चाहे प्रचार करने जाते हों, जब किसी से मिले तो भगवान राम और कृष्ण का कथा बताना चाहिए। हम लोग इसीलिए हैं, इस्कान इसीलिए है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि इस्कान वाले और कोई काम क्यों नहीं करते हैं, ये भगवान राम का कथा सुनाना और कृष्ण कथा सुनाना उनको ज्यादा नहीं लगता है। तो लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल बनवाए इस्कान वाले, फूड फॉर लाइफ चलाएं, लोगों को खिलाएं, भोजन खिलाएं, हॉस्पिटल चलाएं, जितना चैरिटेबल एक्टिविटीज है उसको चलाएं, फिलंथ्रोपिकल एक्टिविटीज। प्रभुपाद जी अमेरिका फूड फॉर लाइफ चलाने नहीं गए थे, प्रभुपाद अमेरिका ये हॉस्पिटल बनाने नहीं गए थे, प्रभुपाद गए थे राम और कृष्ण के कथा को बताने के लिए। यही साधुओं का धर्म है, यही साधुओं का धर्म है। मम्मी मैं क्लास दे रहा था तो एक आदमी ये पूछा, तो मेरे मस्तक पर भी ऐसा है, तो पूछा, तो मैं कहा कि चैरिटेबल वर्क आप भी करते आ रहे हो ना, तो बोला कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं करता हूं, लेकिन आप लोग साधु हो तो आप लोगों का धर्म है यह काम करना। तो मैं कहा कि साधुओं का धर्म बनाने वाले आप हो क्या, कि साधुओं को क्या काम करना चाहिए? साधुओं को काम करना चाहिए कि राम और कृष्ण के कथा को लोगों में बताएं। और आप कह रहे हो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज आप नहीं करते हो, आप चैरिटी कर रहे हो। कहा कैसे कह सकते हैं, कहे कि अपने पत्नी का पालन करते हो ना, बच्चों का पालन करते हो ना, घर गृह से चलाते हो ना, कहता कि हाँ, तो चैरिटी नहीं तो और क्या है? चैरिटी मतलब दूसरे के लिए करना, किसके लिए? जिसके प्रति कुछ फीलिंग हो, जिसके लिए फीलिंग नहीं हुआ नहीं करेंगे। तो आपको फीलिंग है पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, तो कर रहे हो, अपने परिवार के लिए, ये चैरिटी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। अब आप बताओ कि आप चैरिटी कर करके आप खुश हो? हमारी तरफ देखने लगा। मैं कहा कि आपके परिवार वाले खुश हैं जिसके लिए चैरिटी आप कर रहे हो? कुछ भी उत्तर नहीं था। मैं कहा कि ऐसा चैरिटी कर लोग मर जाते हैं लेकिन किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। पत्नी उलाहना देती है कि उसका पति कितना अच्छा है, हमारा पति तो हमारा देखभाल नहीं करता है। बच्चे उलाहना देते उसका बाप कितना अच्छा है, बेचारा मर गया गद्दा के समान काम करते करते, लेकिन रामचरण जी क्रेडिट नहीं मिलती है, क्रेडिट नहीं मिलती है। सारे अपने लोग जो अपने हैं पत्नी बच्चे वो भी क्रेडिट नहीं देते हैं, दूसरा क्या देगा? तो चैरिटी से क्रेडिट नहीं होगा, क्रेडिट मिलेगा। देखो यहां सुखदेव गोस्वामी क्रेडिट दे रहे हैं, ऋषि भी तत्वदर्श भी, ऋषियों ने आपको सुनाया होगा भगवान श्री राम का चरित्र। तो साधुओं का यही धर्म है, कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, जो इस्कान का भक्त है, उसका यही काम है कि जाकर के लोगों में भगवान राम और कृष्ण के लीला कथाओं का प्रचार प्रसार करें, बस और कुछ नहीं। यदि एक काम करेंगे तो यह सुखदेव गोस्वामी कितना आसानी से काम निकाल रहे हैं। करें भाई आपने बहुत सुन लिया तो मतलब कि उसको बताऊंगा नहीं। श्रुतम ही वर्णितम भूरी त्वया सीतापति मुहुः, भगवान श्री राम के संबंध में, सीतापति के संबंध में आपने मुंह बार बार सुना है, कई एक बार सुना है, तो ये ज्यादा मैं नहीं सुनाऊंगा, संक्षिप्त में सुनाऊंगा। तो ये पूरा अध्याय, एक ही अध्याय में पूरा रामायण हो गया है, एक ही अध्याय में, जैसे मैं शुरू में 5 मिनट में पूरा रामायण कर दिया, तो सुखदेव गोस्वामी एक अध्याय में रामायण कर दिए। अब भगवान श्री राम के लीलाओं का उपसंहार करते हुए कल का जो श्लोक था उसमें वर्णन था, त्रेतायाम वर्तमानानाम कालम कृत समोभवत रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे। भगवान के जितने अवतार हुए हैं उन अवतारों में से केवल राम ही एक हैं जो राजा बने हैं, और कोई राजा नहीं बना है। कृष्ण को लोग द्वारकाधीश कहते हैं, मथुरेश कहते हैं, लेकिन वो राजा नहीं है, केवल नाम के लिए, काम के राजा नहीं है। वो कभी राजा नहीं हुए कृष्ण, कृष्ण जान करके राजा नहीं हुए। ये मैनेजर बनना इतना आसान नहीं, बहुत गाली सुनना पड़ता है। प्रेसिडेंट बनना, वाइस प्रेसिडेंट बनना इतना आसान नहीं है। जिसको रास्ता नहीं चलने आता वो भी नुक्स निकाल देता है। हम मोदी जी के विषय में कितने नुक्स निकालते हैं लोग, वो कुछ जानते नहीं, बेचारा उसके ऊपर कितना हेडक है वो नहीं देखते हैं। तो भगवान कृष्ण सोचे कि मैं तो सबके हृदय में रहता हूं, मुझे वहां बड़ा आनंद आता है सबके हृदय में, ये राजा क्यों बनूंगा? राजा बनूंगा तो सबके हृदय में नहीं रह सकता हूं, यदि राजा नहीं बनूंगा तो सबके हृदय में रहूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कभी राजा बनने का सोचा भी नहीं। कितने बार राज प्राप्त हुआ लेकिन कभी राजा नहीं बने। जब कंस को मारे तो राजा बन सकते थे, भगवान राजा नहीं है, महाराज सुरसेन को राजा बना दिए। द्वारका बस है, राजा बन सकते थे नहीं, अपने नहीं बने, उनको बना दिए। तो राजा बनने में मजा नहीं है, जो प्रजा बनने में मजा है। तो भगवान राजा बन करके दिखाए हैं, ब्राह्मण के रूप में आए वामन देव के, क्षत्रिय के रूप में आए राम के रूप में, वैश्य के रूप में आए भगवान कृष्ण के रूप में, और क्या, बस शूद्र में तो आए ही, जैसे शुकर रूप धारण करके, नरसिंह रूप धारण कर, किसी भी रूप में भगवान रहे, भगवान भगवान है, लेकिन राजा के रूप में आए। कहा जाता है भगवान राम की करनी और कृष्ण की कथनी, इसको हम मान सकते हैं। मर्यादा को स्थापित करने के लिए भगवान श्रीराम आए, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और वे ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं कि सबके दिल में आज भी रमण करते हैं। आजकल ऐसे लोग हैं जो राम से थोड़ा घृणा करने लगे हैं, पहले लोग नहीं थे ऐसा। जो वुमन लिबरेशन वाले हैं वे लोग कहते हैं राम ने अच्छा नहीं किया, सीता का त्याग कर दिया, सीता गर्भवती थी अत्याचार किए, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि भगवान राम पर क्या बीत रहा होगा जब सीता को त्यागे होंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं पत्नी से पति को बहुत लगाव होता है, तो भगवान राम किस परिस्थिति में त्यागे, राज धर्म और पति धर्म में चुनना था उनको, और वे राज धर्म अपनाए। यदि पति धर्म अपनाए होते तो सीता के दिल में होते, और राज धर्म अपनाए इसलिए सब प्रजा के दिल में है, सबके दिल में है। तो कहते त्रेतायाम वर्तमानानाम काल कृत समोभवत्। त्रेता युग था लेकिन यह था सतयुग के समान। रामे राजनि धर्मज्ञे, भगवान श्री राम के जब राजा थे तो ये धार्मिक राजा थे, और उसके चलते सर्वभूत सुखावहे, सब प्राणी सुखी रहते थे भगवान श्री राम के राज्य में। अब उसी का वर्णन आगे कहते हैं, सुख किसी को कैसे मिलता है, संसार में सुख कैसे मिलता है, उसका वर्णन कहते हैं। बनानी नद्यो गिरयो बरसाणी दीप सिंधव सर्वे काम दुहा आसन प्रजानाम भरतर सभा। यहां पर सुखदेव गोस्वामी परिचित महाराज को भरतर सभा कहते हैं, भरतवर्षियों में भरत वंश में श्रेष्ठ राजा हैं महाराज परिचित। तो जब भी भरतर्षभ कहा गया है तो इसका मतलब यह है कि भरतवंशियों का नाम ऊंचा करने वाले आप हो। भरतवर्षभ अर्जुन के लिए भी आया हुआ है, युधिष्ठिर के लिए भी आया हुआ है। तो भरतर्षभ कहने का मतलब कि राजा का यही धर्म है, राजा को ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि भगवान श्री राम थे हैं। कहते बनानी नद्दो गिरयो बरसाणि दीप सिंधयो सर्वे काम दुहा है, काम दुहा। हम लोगों को क्या चाहिए संसार में, एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? अरे हाई फिलोसफी मत झाड़ो, छोटा वाला बताओ, संसारिक लोगों को क्या चाहिए? सुख चाहिए। और सुख तो बड़ा एक कोड वर्ड हो गया ना, सुख का तार परिभाषा बताओ। रोटी कपड़ा मकान तीन चीज यही चाहिए ना, ये तीन रहेगा तो सब ठीक है। रोटी कपड़ा मकान काम दुहा, काम दुहा मतलब कि समस्त कामनाओं का पूर्ति हो। इस समस्त कामनाओं का पूर्ति कौन कर रहा था? कहते बनानी, बन, वन में घास थे, गाय के लिए घास चाहिए, वन में वृक्षों में फल थे, फल चाहिए, वन से जड़ी बूटियां प्राप्त होती है, औषधियां प्राप्त होती है, वे थे। उसके बाद ऋषियों आदियों के लिए निवास स्थान था, तो वन में जो जो भी चीज प्राप्त होता है वह प्रजा के इच्छा को पूरा करने के लिए होता है। आजकल भी बॉम्बे इत्यादि में जब लोगों का मन उचक जाता है, बड़े दुखी हो जाते हैं, कब चलते हैं थोड़ा लोनावाला होकर के आते हैं, वो वन है, जंगल है, है। तो लोग वन में आते हैं, चलते हैं थोड़ा वृंदावन चलकर आते हैं। दिल्ली वालों का मन भर जाता है, चलते हैं वृंदावन चलते हैं। अब वृंदावन वृंदावन नहीं रहेगा, डबल दिल्ली हो गया है, लेकिन कदम चलते हैं। तो लोग वन में जाना चाहते हैं। वन जो है वो शांति का प्रतीक है। वन में सब खूंखार लोग रहते हैं लेकिन फिर भी शांति से रहते हैं, हैं? वहां शेर भी रहते हैं और हिरण भी रहते हैं, लेकिन कहीं पेपर में नहीं देखे होंगे आप लोगों की बहुत बड़ा स्ट्राइक हो गया है हिरणों में और शेरों में। बेचारे अपना अपना बचा रहे। देखो भय सब जगह है, हिरण को शेर से भय है वन में, कहीं हिरण वहां से बाहर आ जाएंगे तो मांस खाने वालों से भय होगा बाहर आने पर। तो भय सर्वत्र है, ये संसार है पवर्ग प प ब भ और म, मतलब भय, भय सब जगह है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी वन में शांति है। आज भी लोग कामना करते हैं वन में जाएंगे। प्रकृति हमारी माता है और माता का काम है संतान को सुखी रखना। माता के शरण में जाने से हम सुखी रहेंगे। तो वन में जाने से शांति मिलती है, वन सब कुछ देता है। भगवान कृष्ण और बलराम भी वन में जाना चाहते थे। यशोदा मैया नहीं चाहती थी कृष्ण वन में जाए, लेकिन कृष्ण उतावला थे वन में जाने के लिए। गोपाष्टमी के दिन बड़े खुश थे और गिरिराज जी जो अर्पण किए हैं, हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्जो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोती सह गोप गणया पानीय सुजव सकंदर कंद मूलई। मिनरल वाटर मिलता है वन में, बिसलेरी की जरूरत नहीं पड़ेगा, मिनरल वाटर नेचुरल झरने का पानी, सुशीतल जल मिलेगा। तो कोई तैरना जानता हो तो वहां पर झील बड़ा बड़ा है, तैर भी सकते हो स्वास्थ्य के लिए। तो बनानी बहुवचन सारे वन काम दुधा। यहां पर तो कुछ ऐसे भी देखिए, जंगल और वन दोनों में थोड़ा अंतर है। वन मतलब जंगल ऑटोमेटिकली आ जाता है, वन का मतलब जंगल उसमें आ जाता है, या 100 रुपए के नोट में 50 रुपए ऑटोमेटिकली आता है। जंगल मतलब खूंखारता, जहां कटीली झाड़ियां हो, हिंसक पशु हो, कोई बदमाशी कर लगता तुम जंगली आदमी है, ये कहते हैं ना तुम जंगली हो, खूंखार हो, है? तो जंगल मतलब खूंखार और वन मतलब सब कुछ हो, खूंखारता भी हो, हिंसक पशु भी हैं, कटीली झाड़ियां भी हैं, लेकिन साथ साथ वहां पर सुमधुर फलों के वृक्ष भी हैं, है? साथ साथ वहां पर तोते और विभिन्न प्रकार की पक्षियां हैं जो कलरव करती हैं, और उन पक्षियों के कलरव से वातावरण इतना सुशांत हो जाता है। जंगल वन का टाइमिंग भी है सब चीज का अलग अलग, सुबह का जो समय है अलग भाव, दोपहर का अलग, शाम को अलग। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल के जो शहर हैं वो भी जंगल हैं, लेकिन कंक्रीट जंगल हैं, जंगल हैं कंक्रीट जंगल हैं। वह जंगल जिसमें कोई पेड़ पौधा ना हो तो उसे वो जंगल है। तो बनानी शब्द का बहुत बड़ा विस्तृत मतलब है, लंबे लंबे पेड़, छोटे छोटे पेड़, अलग अलग। मतलब इतना अच्छा है कि आप देखने जाओ तो केवल पेड़ ही देखते रह जाओगे और उसी में आनंद आएगा, और कोई जरूरत नहीं है। फिर आता है नद्यो, नदियां, नदियां से सुंदर जल प्राप्त होता ही है, नदियों से शीतलता प्राप्त होती है जो मन को शांत बनाती है। नदी के किनारे आप बैठ जाओ, गंगा किनारे चले जाओ और गंगा जी के कल 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 आते हुए धाराओं को देखो, कितनी शीतलता प्राप्त होती है। जब गंगा महाराज शांतनु को छोड़कर चली गई थी तो कई एक महीने तक, वर्षों तक महाराज शांतनु जा करके और गंगा किनारे दिन भर बैठे रहते थे, शांति मिलती थी। नदी के किनारे जाने से शांति मिलती है। नहाना वहाना तो ठीक है, गर्मी का दिन हो तो और मजा आएगा है? पानी भी शुद्ध चलता है, बहता पानी है तो शुद्ध पानी। कहते हैं कि बहता पानी रमता जोगी, हमेशा शुद्ध रहते हैं है? रमता जोगी मतलब भ्रमण करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। केवल मंदिर में दिन भर रहोगे तो दिमाग खराब होगा। कभी कभी जाना चाहिए प्रचार करने के लिए, प्रचार करते रहना चाहिए। तो नद्यो और गिरयो, गिरी देखो वन में सब कुछ आता है, फिर भी यहां पर सेपरेट किए हैं। गिरयो पर्वत जिसमें कंदरा हो, गुफा हो है? बड़ा बड़ा चट्टान से जो बना हुआ होता है वो गिरी कहलाता है। जैसे विंध्याचल है वो गिरी है, गोवर्धन जो है वो गिरी है, गिरी गोवर्धन है, जिनको उठाया जा सकता है। वन को उठान वो स्थित रहता है, गिरी उठ सकता है। और पहले एक गिरी उड़ते भी थे, तो उसके बाद वर्षाणी, ये भारतवर्ष विभिन्न भागों में बटा हुआ था, कई एक भाग थे उसे वर्ष कहा जाता था। जैसे द्वीप समुद्र, सातों समुद्र, नौ द्वीप, ये सब के सब भगवान श्री राम के कंट्रोल में थे। और बड़े स्वेच्छा से, डर से नहीं, बड़े स्वेच्छा से लोग देते थे भगवान श्री राम को और प्रजा को। जब हम किसी को खूब प्यार करते हैं तो अपना सर्वस्व उसको देना चाहते हैं, अच्छा से अच्छा चीज देना चाहते हैं। और जब डर होता है तो डर से भी देते हैं। देने का दो तरीका है, डर से और प्यार से। तो भगवान राम के डर से लोग नहीं देते थे, भगवान राम से प्यार करते थे। ये वन, नदियां, पर्वत, सब वर्ष, सब स्थान, उसके बाद द्वीप और समुद्र, सब प्रेम करते थे। इसीलिए ये लोग प्रजा के लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू लव मी देन लव माई डॉग, है तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे कुत्ते से प्यार करो, अमेरिकन कहावत है। तो यदि बेटे को कोई प्यार करता है तो बाप अपने आप खुश हो जाता है। तो राजा के लिए प्रजा उनका संतान है। तो सर्वे काम दुधा आसन प्रजानाम, प्रजाओं के लिए, सबके लिए, सारे प्राणियों के लिए। आजकल के जो राजा हैं वो प्रजा नाम के नाम पर केवल दो पैर वालों को प्रजा समझते हैं। वो दो पैर वालों या आजकल अपने जात वाले जो हैं उनको प्रजा समझते हैं, अपने प्रांत वाले हैं उनको प्रजा समझते हैं। गाय भी प्रजा है। पता नहीं लोगों की बुद्धि कहां चली गई है। प्रजा मतलब जो प्रकृष्ट रूपेण ज, जिसका जन्म हो चुका है, जो बोल सकता है, मतलब चल फिर सकता है, जिसमें सेंसेशन हो, वो प्रजा है। आजकल ऐसे भी मूर्ख लोग हैं जो लोग एनिमल सोसाइटी बनाए हैं। एक कुत्ता को आप मार डालो तो उस पर केस कर देंगे, लेकिन गाय खाते हैं वो लोग। जब एनिमल सोसाइटी है, कुत्ता को एनिमल मानते हो तो गाय क्यों खाते हो, बकरी क्यों खाते हो, उनका भोजन है। तो वहां पर इनका फिलॉसफी नहीं चलता है। तो ये फिलॉसफी अपने सुविधा के अनुसार बनाते हैं और ऐसे मूर्ख लोग फॉलो भी करते हैं। वो क्या नाम है सोसाइटी का, एनिमल सोसाइटी का, ओके है? अरे पूरा फॉर्म बताओ ना, मेनका गांधी बना चलाती है। हाँ, एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो सब मानसा, ये सब गाय गौशाला का जो क्या नाम कसाई खाना है बंद करा दो, उसके लिए नहीं करेंगे बेटा लोग, कुत्ता के लिए जरूर करेंगे। पता नहीं कुत्तों से कितना प्यार हो गया है। कुत्तों से बहुत इन लोगों को प्यार है, मोस्टली कुत्ते के लिए करते हैं। कसाई खाना बंद कर दो, वो भी ये है, वो नहीं करेंगे। तो एनीवे, तो सब लोग खुश थे भगवान श्री राम के राज्य में। आगे इस श्लोक में कहते हैं ना आधि, आधि मतलब वह रोग जिसे देखा ना जा सके, वह ताप जो देखा ना, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन तापों को आधिक ताप कहते हैं, जो अपने बस में न हो। एक ताप जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अपने बस में नहीं है। बादल फट गया, गए कितने लोग उत्तराखंड में, अपने बस में नहीं है। दैविक, आदिदैविक, आदि भौतिक, मानसिक, मन डिस्टर्ब हो गया। मन को खुश और डिस्टर्ब करने में जिसका बुद्धि काम नहीं करता है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसका मन बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो सकता है और उसका मन बहुत जल्दी खुश भी हो सकता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो धीर होता है, स्थित धीर मुनिरुच्यते, वो धीर व्यक्ति होता है, गंभीर होता है। वो छिछली नदी के समान नहीं होता है कि थोड़ा पानी अच्छी ज्यादा कितना करंट उसी में आ गया है। थोड़ा पानी छिछली नदी है, वो गहरे पानी के नदी के समान होता है, जो शांत होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। यही कृष्ण भावना का परिचय है। तो मन डिस्टर्ब बहुत करता है और हम ही डिस्टर्ब होते हैं। जो क्रोध करता है, किसी को जलाने के लिए अपने हाथ पर अंगूठी रखा है, आग रखा है, अपने हाथ पर आग रख गए, वो दूसरे को जलाने के लिए, तू ही तो जल रहा है, पहले दूसरा बाद में जल, पहले तू जल रहा है ना। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं वो समझते हैं, इसलिए अपने हाथ पर अंगूठी नहीं रखते हैं, आग नहीं रखते हैं। और ये मन का काम है, मन और अहंकार, इससे जो दुख होता है, आधिदैविक देवताओं के द्वारा, आध्यात्मिक जो दुख है, इस मन का दुख अहंकार के चलते होता है, जो दिखाई नहीं पड़ता है, और आदि भौतिक सर्प, बिच्छू, डसम, दूसरे प्राणियों के द्वारा। कोई आ रहा है, पता नहीं कैसा है, गोली मार दिया, हम तो देखते नहीं कि उस मन में क्या आ रहा है। तो ये है, ये कहलाता आधि। और व्याधि जो रोग देह में होता है, तो आधि व्याधि, जरा बुढ़ापा, बुढ़ापा भी दुख का कारण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, बुढ़ापा दुख का कारण है। आप लोग जवान हो, इसका मतलब ये मत भूलना कि हम बुढ़े नहीं होंगे, सब बुढ़े होंगे। और जब बुढ़ापा आएगा तो कोई साथ नहीं देगा, ये शरीर भी साथ नहीं देगा। शरीर से संबंधित जो है, पत्नी, पुत्र, परिवार, वो तो दूर रहा, जैसे मुरली अपने बच्चे को लिया है, ये भी साथ नहीं देगा उस दिन। वो बीबी का सेवा करेगा, तुम्हारा सेवा नहीं करेगा, साथ नहीं देंगे कोई, शरीर भी साथ नहीं देगा। बाल बच्चा परिवार तो दूर रहा, शरीर भी साथ नहीं देगा। तो जरा बहुत दुखदाई है, बुढ़ापा बहुत दुखदाई है। बुढ़ापे में मानसिक दुख होती है, शारीरिक दुख तो होता ही है, मानसिक दुख, जिस परिवार के लिए हम इतना किए हैं, नाती पोते गरम गरम जलेबी लेकर चला जाता है और बूढ़े बाबा के जीभ में पानी आती है, बूढ़े बाबा पानी मांगते हैं, प्यासे हुए, बहू कहते हैं बुढ़वा चुप रहो, क्यों रट रह गए हो। मानसिक दुख, शारीरिक दुख, बहुत दुख, बुढ़ापा वास्तव में खतरनाक है। जवानी में मर जाना बल्कि अच्छा है बुढ़ापे के बजाय। जवानी में कम से कम नाच गा करके प्रसाद खाकर मर सकते हैं, बुढ़ापे में प्रसाद भी उतना नहीं खा सकते हैं, तेल मचाला मिर्चा वाला तो अभी नहीं होगा, पेट खराब हो जाएगा, नाच भी नहीं कर सकते हैं, गा भी नहीं, सोचते रहते हैं। इसीलिए कुलशेखर जी कहते हैं, कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम अदैव मे मानस राज हंस प्राण प्रणयान समय कफ बात पित्तौ कंठ अवरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते। स्मरण नहीं हो पाएगा उस समय, इसलिए जितना दिन गर्म खून है इस खून का दुरुपयोग मत करो, इसको सार्थक करो, नाचने में गाने में भगवान का नाम लेने में, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, चिंतन करने में। हम लोगों को डेली चिंतन करना चाहिए, यदि चिंतन नहीं करोगे तो चिंता करोगे। डिसाइड हमें करना है कि हम चिंता करके मरना चाहते हैं कि चिंतन करके मरना चाहते हैं। चिंतन किसका करना है, आधा घंटा समय दो, बैठ लो, देखो कि आज मैंने क्या क्या गलती किया, आज मैं जप किया कितना बार शुद्ध भगवान का नाम हुआ, आज मैं मंगला आरती गया था मुझे क्या अनुभूति हुई, आज मैं प्रवचन सुना अपने जीवन में से कैसे उतार सकता हूं। साधना भक्ति का जो कर रहे हो दिन में उसको फील करो, फील इट, ये है चिंतन। जप कर रहे हैं डेली, क्या भगवान से हमारी आसक्ति बढ़ रही है, क्या देह से विरक्ति हो रही है, पुत्र परिवार समाज से विरक्ति हो रही है, इसका चिंतन करो, यही है मेडिटेशन। यदि हम चिंतन करेंगे तो चिंता नहीं होगी, और चिंतन नहीं करेंगे तो चिंता होगी, और चिंता जीवित को भी जलाता है मरते दम तक। चिंता चिता समाहृत्य बिंदु मात्र विशेषत संजीव दहते चिंता निर्जीव दहते चिता। चिंता और चिता में कोई भेद नहीं, केवल बिंदु हो गया तो चिंता हो गया, और बिंदु निकाल दो तो चिता हो गया, और दोनों का काम है जलाना, एक जीवित को जलाता है और एक मरने के बाद जलाता है। जो चिंतन करता है उसे कभी चिंता नहीं होती है, तो हमें चिंतन करनी चाहिए, और अभी कर सकते हैं, यदि अभी नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में कल चिंता करोगे, याद रखो। एक कहना कहा भजन बुढ़ापे के लिए, वो बुढ़ापे में भजन कहां होगा, कल चिंता होगा, जो है उसका भी चिंता और जो नहीं उसका भी चिंता। तो सही में बुढ़ापा बड़ा दुखदाई है, मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी ऐसे परिस्थिति होगा। सही में मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं, मुझे बैक पेन है, ठीक है, सितंबर में शुरू हुआ, अप डाउन करते रहा, मैं कभी मैं सोचा बहुत मजबूत हूं, मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन जब मैं अमेरिका में था इतना था कि न मैं सो सकता था, न बैठ सकता था, न चल सकता था। कभी मन करता कि क्यों मैं जीवित हूं यहां तक, आई एम ओनली 58 ईयर, नॉट टू ओल्ड, बट तो एक चीज, और उसमें क्या है, स्लिप डिस्क, थोड़ा सा डिस्क खसक गया है। भगवान कितने बड़े साइंटिस्ट हैं कि थोड़ा घसका तो गया काम से। हम लोग बड़ा बड़ा बात सोचते हैं, बहुत कुछ हमें कर देंगे, ऐसे कर देंगे, अरे एक तो ठीक करो स्लिप डिस्क को, थोड़ा घसक गया उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, और क्या काम करोगे। अहंकार विमुद्धात्मा कर्ता अहमिति मन्नते, ये अहंकार ही है कि हम अपने को समझते मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। एक बार जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता उसमें बहुत अहंकार होता है, कोई दो राय नहीं है। प्रभुपाद जी कहानी कहते हैं कि एक बार एक मुगल बादशाह, वो महाभारत के विषय में बहुत सुना था, तो उसके राज्य में एक थे गोपाल भट्ट, बड़े विद्वान पंडित, तो उनको बुलाया और गोपाल जी से कहा, गोपाल जी मैं चाहता हूं कि मेरा भी एक महाभारत बन जाए। वो महाभारत कृष्ण के नाम से बना है, पांडवों के महाभारत में पांडवगण, राइट, तो एक मेरा महाभारत बन जाना चाहिए। तो गोपाल भट्ट ने कहा कि बहुत अच्छा आपका सलाह है, तो कहा तो देखिए इसके लिए हमें बहुत पंडित बुलाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा आपके जीवन में क्या क्या आपने सब किया है ना। तो कहा बिल्कुल, कितना खर्चा लगा? 1000 मोहर, गोल्ड मोहर, ठीक है ले लो, चलो महाभारत बनाओ। ये पंडित जी भी चलाक थे, पैसा बनाने का अच्छा तरीका समझ गए, कुछ पंडित लोगों को बुलाए और सब पैसा ले लिए। एक महीना बीत गया तो नवाब ने बुलाया, कहा गोपाल ये बताओ कि महाभारत लिखा गया कि नहीं मेरा अभी तक, मैं जानना चाहता हूं, अभी उस महाभारत के बदले में इस महाभारत को प्रचार कराना चाहता हूं मैं। तो गोपाल भट्ट ने कहा कि महाराज एक तकलीफ आ रहा है। कहा क्या तकलीफ है? कहा देखिए वो पंडित लोग नहीं पूछ पाते, हमसे पूछे हैं आपसे पूछने के लिए, आपके पत्नी के कितने पति हैं? आपके पत्नी के कितने पति हैं? है बदमाश, पागल है, कैसा प्रश्न कर रहा है, मेरे पत्नी के कितने पते हैं, मैं अकेला पति हूं और कितने पत्नी? तो क्या महाराज आपका महाभारत नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि द्रौपदी 5 पति थे ना, द्रौपदी सेंट्रल, महाभारत का सेंट्रल पॉइंट द्रौपदी है, द्रौपदी 5 पति थे, तो आप नहीं अकेले पति हो तो महाभारत आपका नहीं हो सकता है। पैसा बना लिए पंडित जी, कहीं महाभारत नहीं हो सकता है। तो मैं कहा कि अहंकार आत्मा, अहंकार के चलते मूर्ख लोग कभी कभी अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, यहां तक कि कहते हैं महाभारत लिख दे मेरा। तो मैं बात करता जरा, बुढ़ापा सही में दुखदाई है, तो प्रभु भगवान ने हम लोगों को अच्छा शरीर दिया है, अभी गरम गरम खून है, नाच लो गा लो भजन करो, बुढ़ापा में संभव नहीं होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा कोई काम करने के लिए। ब्रह्मचारी आश्रम में से यहां पर आने में 6 मंत्र 2 मिनट में आ सकते हो दौड़ करके, बुढ़ापा में संभल कर चलना पड़ेगा, कहीं पैर फिसल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, सीढ़ी उतरने में संभल कर चलना पड़ेगा, पता नहीं एक सीढ़ी ट्रिप हो गया तो गया काम से, जवानी में गिर जाओगे तो अभी संभल जाएगा। रघुनाथ प्रिया प्रभु कहां है, है ना, एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस लेना हो तो जो एल्डरली डिवोटी हैं उनसे पूछ सकते हो आप लोग। तो बुढ़ापा सबके लिए बड़ा खतरनाक है। ग्लानी यानी बिच्छो या क्या बोलते हैं, ग्लानी को क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, ग्लानी हो रही है मन में, गिल्टी, फीलिंग गिल्टी, तो उस समय लोग गिल्टी नहीं फील करते थे क्योंकि वो हिपोक्रेट नहीं था। जो हिपोक्रेट होता है, कहने के लिए कुछ, हाथी का खाने का दांत अलग और दिखाने का अलग, तो कहने के भाषण खूब देता है लेकिन करता कुछ और है, तो उसमें गिल्टी होती है, गिल्टी फीलिंग होती है, ग्लानी होती है, भले प्रकट ना करे लेकिन ग्लानी होती है, और उस ग्लानी को दूर करने के लिए वो गुस्सा करता है। ग्लानी क्यों होती है? स्वार्थ के चलते, हिपोक्रेसी के चलते, तो हिपोक्रेसी खत्म नहीं करना चाहता है बल्कि एक दूसरा पालन कर लेता है क्रोध। तो महाराज भगवान श्री राम के राज में किसी में ग्लानी नहीं थी क्योंकि कोई स्वार्थी नहीं था, कोई हिपोक्रेट नहीं था, दुख कष्ट नहीं था, किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। अरे बाप के सामने बेटा नहीं मर सकता था, आजकल ऐसा हो सकता है? एक ब्राह्मण के सामने उसका बेटा मर गया था, भगवान राम के पास सीधे गया और कहा कि आप कैसे राजे हो, मैं अभी बाप जीवित हूँ, मेरे सामने मेरा बेटा मर गया। तो भगवान राम ने कहा ठीक है पता लगाता हूँ। तो पता लगाने गए तो देखे कि शूद्र जो था वो वेद पढ़ रहा था या तपस्या कर रहा था, जो भी कर रहा था कुछ जो उसे नहीं करना चाहिए। तो भगवान राम उसे पनिशमेंट दिए, देव उसका गला काटे, तब उसका बेटा जी गया। तो बाप के सामने बेटा भी नहीं मर सकता था, यह है राम राज्य। शोक, भय, थकावट भी नहीं होती थी, क्लेशता नहीं था, थकावट नहीं था। लोग कितना भी काम करें, आज तो ब्रह्मचारी लोग भी थक जाते हैं 10 मिनट में। अभी हमारा कहां गया, भाग गया, वो मृदंग बजा रहा था। हाँ देखो, मैं कहा चलो क्लास में, कहा प्रभु जी मैं थक गया हूं। ब्रह्मचारी क्या थकने का। राम राज्य मतलब कृष्ण कांसस। जो व्यक्ति चाहता कि ये सब पर मुझ पर ना हो तो कृष्ण कांसस बन जाओ, सिंपल चीज। राम राज, राम राज चाहिए तो पहले राम को पकड़ो, तब राम राज स्थापित होगा। आज लोग राम राज चाहते हैं लेकिन राम को नहीं चाहते हैं, क्या फायदा। बोले राम को पकड़ो तो जो राम का भक्त बन जाएगा, जो कृष्ण का भक्त बन जाएगा, उसके पास न तो किसी प्रकार का आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुख रहेगा, न तो कोई रोग होगा, न बुढ़ापा होगा। प्रभुपाद जी उदाहरण के लिए, वैद्यराज कह रहे थे कि पता नहीं स्वामी जी कैसे अभी तक जीवित हैं, इनके शरीर में इतना दुख है, इतना दुख, तो मर जाना चाहिए, सामान्य व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी देह से परे हो गए थे तो उन्हें देह का दुख का कोई अनुभव नहीं हो रहा था। तो जो राम राज्य को चाहता है उसे पहले राम को स्थापित करना का। राम राज्य में सब लोग भगवान श्री राम को प्रेम करते थे, राम का भजन करते थे, इसीलिए भगवान राम का काम था कि सब न आए, उनकी अनुमति के बिना रोग भी नहीं आता था, थकावट नहीं था, मृत्यु मरण भी नहीं था। क्योंकि अरे संसार में जब आया उसे मरना ही पड़ेगा। मरण उसका होता है जो अपने को देह मानता है, जिसका देह से संबंध है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है उसे मरण कहा। आत्मा का मृत्यु है क्या? आत्मा कभी नहीं मरता है। भगवान गीता में बतलाए हैं, कैसे है वो, नहीं नहीं तो काट नहीं सकते हैं सुबह। हाँ, नैनम छिद्यन्ति सहस्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुत। तो हम लोगों को इस प्लेटफार्म पर पहुंचना, इसका मतलब कि राम राज में सब लोग इस प्लेटफार्म पर पहुंच गए थे। ये है राम राज्य। राम राज का मतलब राम कांसस, कृष्ण कांसस। मृत्युश्च अनिच्छिताम, जब इच्छा न हो तो कोई मरता भी नहीं चाहता था। इसका मतलब यह है कि लोगों में इच्छा थी मरने का। जो राम राज में हैं, जो राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, चाहे मरे या जीवित रहे उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो कृष्ण का भक्त नहीं है, राम का भक्त नहीं है, जो अपने इंद्रियों का भक्त है वही जीना चाहता है, कुछ और जी लूं, कुछ और जी लूं, मर रहा है फिर कुछ और जी लूं, उस कामना होती है। न आसित रामे राज्यम राज्यन अधुक्षजे, भगवान राम को यहां अधुक्षज कहा गया है। भगवान श्री राम जिनके लीलाओं को, जिनको समझना हमारे इंद्रियों से परे हैं। इस सही में सुखदेव गोस्वामी चुन चुन करके वर्ड लिखे हैं, कहते हैं राजन अधुक्षजे हैं, रामे राजन अधुक्षजे, रामे अधुक्षजे राजन। राम कौन थे? अधुक्षज हैं, इंद्रिय तीत हैं। जो इंद्रिय तीत हैं उनको भी लोग जानते थे और इसीलिए ये नहीं होता था। तो कृष्ण भी अधुक्षज हैं, राम भी अधुक्षज हैं। तो जो व्यक्ति सुखी से जीना चाहता है उसको चाहिए कि कृष्ण भावना भावित हो जाए। कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो फिर किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि त्रेता युग में ही रामराज नहीं था, इस कलयुग में भी हम रामराज का स्थापना कर सकते हैं, और कलयुग में बल्कि आसान है रामराज का स्थापना करना, और वह है हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम राम राम। हम देखते हैं कि परिवार में मंदिर में भी डिसेंटन रहता है, टेंशन बना रहता है, क्यों? इसका एकमात्र कारण है कि हम कृष्ण भावना भावित नहीं हैं। यदि कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई मनमुटाव नहीं रहेगा। मैं प्राय उदाहरण देता हूं भगवान शिव के परिवार का। भगवान के शिव के परिवार में सब लोग विपरीत परिस्थिति के हैं, लेकिन फिर भी शांति बनी रहती है। भगवान शिव हैं, पार्वती जी हैं, कार्तिकेय हैं और गणेश जी हैं, और शिव जी के वाहन वृषक हैं, पार्वती जी के वाहन शेर हैं, कार्तिकेय के वाहन चूहा हैं, मयूर हैं, और गणेश जी के वाहन चूहा हैं, और भगवान शिव के गले में सांप रहते हैं। अब आप सोचो कि सांप और चूहा में कभी दोस्ती होती है? मोर और सांप में कभी दोस्ती होती है? शेर और बैल में कभी दोस्ती होती है? सब विपरीत परिस्थिति के हैं, लेकिन फिर भी कभी आपने पेपर में पढ़ा है कि चूहा पर अटैक किया सांप या सांप पर अटैक किया मोर? कभी पढ़ा आपने? कभी सुना कहीं शिव पुराण में? चाहे कहीं पढ़ा है, कहीं नहीं पढ़ा है, क्योंकि वहां राम राज्य था। भगवान शिव हमेशा राम नाम लेते थे, और वैसे उनके परिवार वाले, तो जिस मठ में, जिस मंदिर में, जिस घर में हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो वहां कोई कलह नहीं रहेगा। और कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना को हटा दिया जाए और कितना भी एडजस्टमेंट आप करो, कलह बिना बुलाए आएगा, मेंटल फिजिकल सब प्रकार का दुख आएगा। तो राम राज चाहते हैं तो राम को स्वीकारना पड़ेगा, राम कांसस बनना पड़ेगा, कृष्ण कांसस बनना पड़ेगा, तब राम राज की स्थापना हो सकती है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? मथुरा मान इका क्या प्रश्न की? इधर रसवर्ज रसोपस्यम परम दृश्य। इनका प्रश्न था कि शिष्याष्टकम का अंतिम जो श्लोक है, शिष्याष्टकम का अंतिम श्लोक क्या है मथुरा मोहन? शिष्याष्टकम जानता है किसे कहते हैं? शिष्याष्टक क्या होता है? एक श्लोक बताओ शिष्याष्टक का। तू लोग क्या करते हो समझ में नहीं आता है। एक श्लोक बताओ शिष्याष्टक का। तुम बताओ मारे ब्रह्मचारी। हाँ हाँ क्या जोर से बोलो, माइक दबाओ उसको। हाँ चलो बोलो। और वितरणम उसके बाद सो गया? तू बताओ मथुरा मोहन, क्लास उस दिन दे रहा था, बताओ है क्या बोला? वो कोई सुना क्या बोला? हाँ बोलो। हाँ तो बोलो पूरा श्लोक बोलो, एक श्लोक तू बोल दो आज, चलो पास एक श्लोक श्री शास्त्र का तुम बोलो आज बस। आठ श्लोक है ना, ये जानता है ना कितने, सोलह है, कितने श्लोक हैं हैं, कितने श्लोक हैं श्री शास्त्र में, सोलह के बीस हैं, साठ, आठ तो बताओ, एक बताओ। पूरा बताओ ना, डेली यहां पाठ होता है मंगल आरती के बाद, तू लो हवा खाने जाते हो, मुरली बताओ, आठवां श्लोक बताओ तुम, और अच्छा ये बताओ तू कहां सीखा था ये सब, वो कहां पर,
वृंदावन में।
हाँ तो पहले सीखा था, काम आया, आज नहीं सीख रहा है कुछ भी, समय नहीं है, समय तो यहां पर है, अपॉर्चुनिटी है ना, ये दूसरों पर मत ब्लेम करो ना, बोलो हाँ प्रभु जी ट्राई, बोलो कि मैं ट्राई करूंगा कल से,
आज से कल
बाहर मत जाओ, सुनो
कल पूरा सुना दूंगा,
कल सुनाएगा, ये ठीक नहीं है। सब लोग सुबह होता है सचक यहां पर रहो। एनीवे इनका प्रश्न था आठवां श्लोक, आशिष्यवापाद्रताम विनष्टमाम अदर्शनम मरमहताम करो तुवा यथा थावद विद्धातु लंबटो मत प्राण नस्तु स एव नापरः। हे भगवान आप ही मेरे परम आराध्य हैं, चाहे आप मुझे इम्ब्रेस करें या ब्रोकन हार्टेड कर दें, ब्रोकन हार्टेड मतलब छिन्न विदिन कर दें, लेकिन जन्म जन्मांतर तक आप ही मेरे आराध्य बने रहोगे। तो आपका प्रश्न क्या था, मैं भूल गया बीच में। हां तो ऐसा क्या है कि भक्त लोगों में इतना आसक्ति भगवान में, चाहे भगवान हमको दुत्कारें मारें चाहे प्रेम करें, फिर भी उनमें लगे रहते हैं। रसवर्ज रसोपस्य परम दृश्यवान निवर्तते, जब हायर टेस्ट मिलती है तो लोअर टेस्ट अपने आप खत्म हो जाती है। जो संसार का टेस्ट है, पत्नी का, बच्चों का, रुपया पैसा का, घर द्वार का, ये सब बहुत निम्न क्वालिटी का टेस्ट है। ऐसा टेस्ट कुत्ते गधे भी करते हैं, कुत्ते भी अपने बच्चों को पालन करते हैं, गधे भी पालन करते हैं, सुअर भी करते हैं, अपना परिवार देखते हैं, घर देखते हैं, हम भी वही करेंगे तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है उसे परे हो जाता है, उसको हायर टेस्ट मिलता है। तो हायर टेस्ट के लिए, अरे लोअर टेस्ट वाले भी इतना कठिन परिश्रम करते हैं, कुचल दिए जाते हैं फिर भी खड़ा होते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ टेस्ट है। और जिसको हायर टेस्ट है वो भी तैयार है सेवा करने के लिए, तो उसे हायर टेस्ट की प्राप्ति है। वो हायर टेस्ट ही है जो भक्तों को कुछ भी करने के, चाहे भगवान कुचल दें उसको, चाहे भगवान प्यार करें, वो हायर टेस्ट है जो भक्तों को लगाए रखता है। और कोई प्रश्न, देखो सब लोगों को अपना अपना काम करना चाहिए, बेटर टू डू। ये ठीक वैसे ही हुआ कि जैसे कोई आर्किटेक्ट है और किसी का ऑपरेशन करने बैठ जाए, तो राजा का काम क्या है, झपड़ नहीं मारे बदमाश नहीं का, तो आर्किटेक्ट ऑपरेशन कर रहा है। चाहे लोहार है और किसी का ऑपरेशन करने बैठ जाए, वो क्या ऑपरेशन करेगा, वो मार डालेगा ना। तो शूद्र का जो काम, अपना शूद्र काम करो, परकर्म भयावह, वो ब्राह्मण का काम सीधे कर रहा था, फर्स्ट स्टेशन पहुंच गया, टॉप स्टेशन में गाड़ी चलाया, अरे फर्स्ट गियर में जाओ, सेकंड गियर में जाओ, थर्ड गियर, तब टॉप में जाओ ना, एक बार टॉप में पहुँच गया, गाड़ी टूटेगी नहीं तो क्या होगा। तो वही तो भगवान राम ने किया, तुम उसके योग्य नहीं हो और ये बदमाशी कर रहा है। और कोई प्रश्न? ऑल राइट, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, श्री श्राधा माधव ललिता विशाखा की जय, श्री श्री जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की जय।